हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राविया को इस तरीके से चीखते हुए देखकर इमामी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बहन, गुस्सा क्यों हो रही हो? हम तो तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो भी एक अमीर परिवार में। तुझे पता है, मिस्टर चटवानी का इंडिया में अपना बिजनेस है और बहुत बड़ा नाम है। ये तुझे बहुत खुश रखेंगे। तूने देखा नहीं, बाहर इनकी लग्जरी कार खड़ी है, जिसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी हैं। मैं तो तेरी किस्मत देखकर ही जल रही हूँ। तुझे कितना अमीर परिवार मिलने वाला है। वैसे भी तुम्हारी अपनी कोई फैमिली नहीं है, तो बस पापा चाहते हैं कि मैं एक अच्छे घर में चली जाऊँ, ताकि हमारी सर से भी ये टेंशन दूर हो जाए कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तुम बाहर जॉब करने जाती हो, यहाँ पापा का दिल हर वक्त घबराता रहता है। उसकी बात सुनकर राविया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी खुद की बहन उसके साथ कभी ऐसे भी बात कर सकती है। उसने इमामी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए गुस्से से कहा, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, सुना आप लोगों ने? ये सुनकर सामने बैठा सुनील चटवानी सोफे से उठते हुए बोला, ये लड़की मुझे नहीं लगता मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहेगी। राविया ने एक नज़र भरकर चटवानी को देखा। वो करीब 45 साल का आदमी लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते पजामे में देखकर पता चल रहा था वो इंडियन है, वरना उसके फेशियल फीचर फॉरेनर लग रहे थे। शायद उसके माँ या पिता में से कोई एक फॉरेनर था। वहीं राविया की ये बदतमीज़ी सुनकर उसके अंकल सुरेश ने गुस्से में कहा, मिस्टर चटवानी, आप यहाँ से जाइए, ये लड़की 3 दिन बाद इंडिया आएगी और आप उसे एयरपोर्ट से ही पिक करने आ जाना, ये ज़रूर शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सुनकर चटवानी वहाँ से चला गया और राविया बस अपने अंकल को देखती रह गई। उसने जल्दी से कहा, अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपके घर रहती भी नहीं हूँ, फिर आप क्यों मुझे अपना बोझ समझते हैं? मैं अलग जॉब करती हूँ, मेरा अलग फ्लैट है और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है, इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। यहाँ तक कि इमामी भी मुझसे 1 साल बड़ी है, आप इसकी शादी की बातें तो नहीं करते हो? सुरेश ने आगे बढ़कर राविया के बाल पकड़ते हुए दाढ़ पीसकर कहा, तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने अंकल को समझाएगी क्या सही है क्या गलत है? राविया के मुंह से दर्द के मारे एक चीख निकल गई। अगले ही पल सुरेश ने राविया का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहा, मिस्टर चटवानी लंदन में हमारे बिजनेस में हमारा हाथ बटाना चाहते हैं और उनकी शर्त है उन्हें शादी करनी है। उसके लिए हमें लड़की चाहिए और वैसे भी वो बहुत अमीर परिवार के हैं। हम तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। उनकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है। राविया आंखें फाड़े बस सुरेश को देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले ही पल सुरेश ने उसके बाल छोड़कर उसके बाजू पकड़ते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ ये कब तक हाँ नहीं बोलती है। इतना बोलकर वह उसे खींचते हुए कमरे में ले गए। अनंत बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा नॉक कर रहा था, जिस वजह से राविया अपने अतीत से निकलकर प्रेजेंट में आई, पर अचानक ही उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो यहाँ कपड़े लेकर तो आई ही नहीं। उसने जल्दी से बाथरूम में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, तभी उसे वहाँ बाथरूम दिखा। वो जल्दी से अपने शरीर पर बाथरूम पहनते हुए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर अनंत को देखा। अनंत के हाथ में अनाही की एक लाल कलर की साड़ी थी। राविया ने जल्दी से साड़ी लेते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ रूहान और अनाही बालकनी में बैठे थे और बालकनी में उनके सामने रखी टेबल पर शुगर बैठी थी। रूहान ने नर्वसनेस के साथ अनाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैडम जी, आप 100% श्योर हो ना कि शुगर प्रेग्नेंट है? अनाही ने एक टक शुगर को देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, अब आप नाना बनने वाले हो। रूहान ने रोनी सूरत बनाकर कहा, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों नाना बनूंगा? आप भी तो कालू राम को लेकर आई थी, इसका मतलब है आपको भी बिल्लियां पसंद होनी चाहिए थी। अनाही ने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, आई एम सॉरी रूहान जी, मैं बस मजाक कर रही थी। कालू राम को मैं नहीं लेकर आई थी, वो तो आपकी शुगर बेबी का ही बॉयफ्रेंड था जो बालकनी में हर रोज मिलने आता था। मैंने तो बस इसकी हेल्प कर दी थी कि इसे रात को छुपकर मिलने की जरूरत ना पड़े और ये पूरे दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। अब पता नहीं वो काला बिल्ला फिर से कहाँ चला गया और आपकी शुगर बेबी बेचारी अकेली रह गई। रूहान ने आगे बढ़कर शुगर को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, नहीं, मेरी शुगर बेबी कभी अकेली नहीं रह सकती है, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। ये सुनकर अनाही के होठों पर स्माइल आ गई। उसने एक नज़र रूहान को देखा जो काफी नर्वस था, पर साथ में अपनी शुगर को दो दिन बाद अपने सामने देखकर काफी खुश भी था। वहीं शुगर भी अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने पंजों को रूहान के चेहरे पर लगा रही थी, तो कभी उसका हाथ चाट रही थी, जैसे उसे बता रही हो कि उसने भी उसे बहुत सारा मिस किया है। रात के डिनर के वक्त माधवी ने राविया को देखते हुए कहा, बेटा, आज तो हमने तुमसे कुछ नहीं कहा है, पर कल तुम सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाना। नई बहू की सबसे पहली रस्म यही होती है कि वो रसोई घर संभाले। राविया ने आंखें बड़ी करके माधवी की तरफ देखा और फिर रोनी सूरत बनाकर अनंत की तरफ देखा, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। वो फ्लैट पर अकेली रहती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में नूडल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया है। उसकी पूरी जिंदगी स्ट्रीट फूड खाकर ही कटी है। वो लंदन में मौजूद एनजीओ में जाया करती थी, जहां उसे घर जैसा खाना मिलता था, पर उसने कभी खाना बनाना सीखने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अपनी स्टडीज और जॉब के पीछे ही इतनी पागल थी कि उसे कभी किचन में जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। राविया ने अपना गला सही करते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए नूडल्स बना सकती हूँ? सब लोग जो आराम से खाना खा रहे थे एक साथ ही रुक चुके थे। माधवी तो बुरी तरह खांसने लगी थी। उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ या पर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम सिर्फ नूडल्स बनाकर हमारा पेट भर सकती हो? राविया का छोटा सा दिमाग किचन के मामले में बिल्कुल ही जीरो था। उसने अपने मन ही मन कहा, अब और क्या बनाकर खिला सकती हूँ साथ में? उसने जल्दी से कहा, मैं पास्ता भी बना सकती हूँ। माधवी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वहीं विहा को हंसी आ रही थी। वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं अनाही भी राविया को देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो राविया की हेल्प कर देगी, क्योंकि उसके दो जवाबों से ये तो पता चल चुका था कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। माधवी ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम नूडल्स भी बना लेना और पास्ता भी बना लेना, पर साथ में मीठे में भी कुछ बनाना होता है। राविया ने एक हाथ से अपना सर खुजाते हुए कहा, क्या मुसीबत है, मीठे में कुछ बनाना है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर उसने जल्दी से फीकी सी स्माइल के साथ कहा, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, वो मीठी ही तो होती है। चाय मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, वो भी अदरक डाल के। इतनी कड़क चाय बनाती हूँ ना मैं आपको क्या बताऊँ। जो एक बार मेरे हाथ की चाय पी लेता है, वो बस बार बार यही कहता है कि चाय पियो तो सिर्फ और सिर्फ राविया। उसकी ये लाइन पूरी हो पाती उससे पहले ही माधवी ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है? तुम नूडल्स और चाय बनाकर मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? फिर उन्होंने अनंत की तरफ देखकर गुस्से में कहा, और तुम, क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी? इसे खाना तक नहीं बनाना आता है, पता नहीं इसके परिवार वालों ने इसे कोई संस्कार दिया भी है या नहीं।
अनंत का सर झुका हुआ था, उसके पास माधवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहीं राविया को मन ही मन डर लग रहा था, पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा, क्या अनंत उसे छोड़ देगा? उसके दिलो दिमाग में चटवानी का डर सता रहा था। जिस दिन उसे पता चला कि राविया शादीशुदा नहीं है, वो उसी दिन वरमाला लेकर उसके पीछे पड़ जाएगा।